स्पेन, यह एक विडंबना है कि स्पेन, जो आज यूरोप के राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से सबसे पिछड़े हुए देशों में से एक था, आधुनिक काल के प्रारंभ में यूरोप के सबसे शक्तिशाली एवं उन्नत देशों में था। स्पेन का अतीत प्रेरणादायक रहा है, किंतु बहुत थोड़े समय तक, क्योंकि स्पेन की महानता के भौतिक स्रोत उस देश में नहीं थे। आधुनिक स्पेन के इतिहास में 1469 में कास्टिल की इजाबेला एवं अरागान के राजा फर्डिनेंड के विवाह के फलस्वरूप इन दोनों राज्यों का एकीकरण महत्वपूर्ण घटना थी। इससे पूर्व स्पेन के कई छोटे छोटे राज्य यूरोप की गतिविधियों में भाग लेने की स्थिति में नहीं थे। पूर्व में अरागान का राज्य था, जिसमें कैटलोनिया एवं वैलोनिसिया की काउंटियां भी सम्मिलित थीं। उत्तर पूर्व में नवारे का राज्य था, मध्य में लियोन एवं कास्टिल का संयुक्त क्षेत्र था। लियोन में अस्ट्रेसिया एवं गैलोसिया की पूर्ववर्ती काउंटियां भी सम्मिलित थीं। यह मध्यवर्ती ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण राज्य भी था, जिसके उत्तर पश्चिम में अटलांटिक सागर, उत्तर में बिस्के की खाड़ी एवं दक्षिण पूर्व में अरागान एवं ग्रेनेडा राज्य की सीमाओं के बीच भूमध्य सागर की सीमा थी। दक्षिण में एक छोटे से भाग में ग्रेनेडा का मुस्लिम राज्य था। 13वीं सदी के मध्य तक उनकी समस्त शक्ति सूरों के विरुद्ध युद्ध में लगी रहती थी। स्वयं कास्टिल एवं अरागान के राज्यों में भी सामंत शक्तिशाली एवं अभिजीत थे। इन राज्यों की वैवाहिक एकता ने उन्हें उपद्रवी तत्वों को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान की तथा उन राज्यों के प्रभाव में वृद्धि हुई। उनके द्वारा स्पेनिश राज्य में कैथोलिक एवं राजनीतिक भावनाएं इस सीमा तक परस्पर संबद्ध हो गई कि उन्हें पृथक करना कठिन था। राजतंत्र ने अपने प्रजाजनों की प्राचीन कट्टरता का सहारा लिया एवं स्वयं को धर्म के उद्देश्य के लिए एकरूप कर दिया। धार्मिक कट्टरता के प्रति इस राजवंश के उत्साह ने ही इसे अत्यधिक राष्ट्रीय बना दिया। कट्टर लोगों से घिरे इस राज्य की असहिष्णुता ही इसकी सफलता का रहस्य बन गई। 1480 के उपरांत धर्माधिकरण अथवा धर्म परिवर्तन करने वाले यहूदियों के ऊपर निगरानी रखना एक धार्मिक कृत्य के साथ साथ राजकीय संस्था भी बन गया, क्योंकि इस अधिकारी की नियुक्ति, जिसे महाधर्माधिकारी कहा जाता था, राज्य द्वारा ही की जाती थी एवं उसके द्वारा घोषित निर्णयों के ऊपर रोम को अपील नहीं की जा सकती थी। इस संदर्भ में फर्डिनेंड एवं इजाबेला के नाम के साथ ही एक और नाम अविच्छिन्न रूप से जुड़ा है, टाक्यूमेडा का। ये तीनों ही धर्म विरोधियों से अत्यधिक घृणा करते थे। सम्राट उन व्यक्तियों की संपत्ति जब्त कर लेता था जो इस अभियान की अवधि में मारे जाते थे। इस धन का प्रयोग वह उन नए उद्यमों में करता था जो स्वयं राजतंत्र के साथ साथ चर्च के लिए भी लाभदायक हो। मूरों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध एक बार फिर प्रारंभ कर दिए गए, साथ ही यहूदियों के विरुद्ध भी, क्योंकि मुसलमानों के साथ साथ वे भी तो ईसा मसीह के दुश्मन थे। 1492 में ग्रेनेडा के मुस्लिम राज्य पर विजय प्राप्त कर ली गई। उसी वर्ष यहूदियों को निकाला जाने लगा। इन विजयों एवं निर्वासन से राजकोष को प्रचुर धन और राजनीतिक तथा धार्मिक विस्तार के लिए साधन भी प्राप्त हुए। एक और कोलंबस एक नई दुनिया की खोज के लिए चल पड़ा, जिसे जीतने के साथ साथ ईसाई धर्म में दीक्षित किया जाना था। दूसरी ओर मोराक्को के तट पर अल्जीरिया एवं ट्यूनिस आदि के विरुद्ध स्पेनिश सेनाओं के अभियान प्रारंभ हुए, जो यह घोषणा करते हुए प्रतीत होते थे कि स्पेन की समस्त शक्ति इस्लाम के विरुद्ध की जा रही है। 14वीं व 15वीं सदी में तुर्की के बढ़ते प्रभाव से आक्रांत ईसाई जगत में, जहां पूर्व में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और साम्राज्य की राजधानी वियना तक खतरे में पड़ती जा रही थी, वहां पश्चिम में स्पेन के सैनिकों ने मुसलमानों के सदियों पुराने प्रभाव का अंत कर दिया और ईसाई प्रभाव की पुनः स्थापना कर दी। कोई भी अन्य वस्तु स्पेनिश राजतंत्र के लिए इससे बढ़कर गौरव या उन्नति नहीं ला सकती थी। पोप अलेक्जेंडर छठे ने फर्डिनेंड एवं इजाबेला को कैथोलिक राजाओं की उपाधि प्रदान की, किंतु इस महत्वपूर्ण समय में स्पेन के राजा अपनी राजवंशी महत्वाकांक्षाओं में फंस गए, जिसने 200 वर्षों के थका देने वाले संघर्षों के बावजूद भी स्पेन के हाथ कुछ नहीं लगने दिया। यूरोप के राजवंशी झगड़ों में स्पेन के हस्तक्षेप का प्रारंभ देखने के लिए हमें 14वीं सदी के मध्य में जाना होगा, जब अरागान ने सिसिली के मामलों में हस्तक्षेप किया था। वहां अरागान वंश का एक संबंधी राजवंश राज कर रहा था, जिसके समर्थन में हस्तक्षेप करके अरागान ने ड्यूक ऑफ एनजू को वहाँ से खदेड़ दिया। उसी समय से एनजू वंश, जिसका राज्य पर अधिकार था, एवं अरागान वंश, जिसका प्रायद्वीप पर अधिकार था, दोनों में निरंतर संघर्ष चलता रहा। 1480 में अपनी मृत्यु के समय एनजू ने नेपल्स के अपने समस्त अधिकार फ्रांस के राजवंश को दे दिए। फ्रांस का राजा चार्ल्स अष्टम अपने अधिकार को दृढ़ करने का इच्छुक था। उसने 1494 में एल्प्स पार करके नेपल्स का राजमुकुट लेने के लिए अभियान प्रारंभ कर दिया। इस समय फर्डिनेंड तथा इजाबेला ने द्वीप के अपने संबंधी राजा के समर्थन के लिए चार्ल्स के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। इसी समय हैब्सबर्ग वंश का मैक्सिमिलियन नीदरलैंड में फ्रांस के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। उसकी एक एवं स्पेन के शासकों की फ्रांस के प्रति शत्रुता ने दोनों राजवंशों के बीच राजनीतिक और फिर वैवाहिक गठबंधन स्थापित कर लिया। 1496 में स्पेन के उत्तराधिकारी डान जुआन का मैक्सिमिलियन की पुत्री मार्गरेट के साथ एवं मैक्सिमिलियन के पुत्र फिलिप का विवाह स्पेन की राजकुमारी इनाफेंटा जुआना के साथ होने से दोहरा संबंध कायम हो गया। उस समय तक यह अप्रत्याशित था कि इन राजाओं के राज्य एक ही व्यक्ति के अधीन हो जाएंगे, किंतु 1497 में डान जुआन की, 1498 में उसकी बड़ी बहन एजावेला की तथा 1500 में उसके पुत्र हॉन मिगुइल की मृत्यु के कारण स्पेनिश राज्य के उत्तराधिकार संबंधी अधिकार भी मैक्सिमिलियन के पुत्र फिलिप एवं उसकी पत्नी जुआना को प्राप्त हो गए। 1506 में फिलिप की भी मृत्यु हो गई तथा उत्तराधिकार अब उसके 7 वर्षीय पुत्र चार्ल्स को प्राप्त हुआ। 1516 में फर्डिनेंड की मृत्यु के समय चार्ल्स बस वयस्क ही हुआ था। चार्ल्स पंचम के नाम से स्पेनिश राज सिंहासन पर बैठने वाला यह शासक लगभग उतना ही प्रसिद्ध हुआ जितना उससे पूर्व शार्लेमैन एवं उसके बाद नेपोलियन। यद्यपि उसकी प्रसिद्धि का कारण उसकी अपनी योग्यता नहीं अपितु विशाल विरासत थी। यह यूरोप के 3 विभिन्न राजवंशों एवं 3 विभिन्न देशों के इतिहास का संगम स्थल हो गया था। ये देश थे ऑस्ट्रिया, बर्गेडी तथा स्पेन। एक और वह हैब्सबर्ग वंशीय मैक्सिमिलियन एवं बर्गेडी की उसकी पत्नी का पौत्र था। दूसरी ओर फर्डिनेंड एवं इजाबेला से उसे यूरोप के इतने प्रदेशों की विरासत मिली कि ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उसका अधिकार समस्त यूरोपीय मुख्य भूमि पर हो जाएगा। जर्मनी में ऑस्ट्रिया की डचिया उसके अधिकार में थी। उत्तरी समुद्र तट पर वह नीदरलैंड का स्वामी था। साथ ही वह समस्त नया विश्व उसके अधिकार में था, जिसे अत्याचारी विजेताओं ने उसके कदमों में ला गिराया था, जैसे मेक्सिको, पेरू आदि। चार्ल्स की मृत्यु से पूर्व ही दक्षिणी अमेरिका की विस्मयजनक विजय पूर्ण हो चुकी थी। यद्यपि उसके जीवन काल में यह विजय अभी बहुत नई थी, अतः उसके साधनों का चार्ल्स अपनी सत्ता के विस्तार के लिए उपयोग नहीं कर सका और न ही इसका कोई प्रभाव उसकी नीतियों पर पड़ सका। नई विजय के प्रभाव उसके पुत्र के समय में ही परिलक्षित हो सके। चार्ल्स की सभी योजनाएँ एवं साधन यूरोप से ही प्रभावित थे। फर्डिनेंड की मृत्यु 1516 ने जब उसे स्पेन का एवं मैक्सिमिलियन की मृत्यु 1519 ने जब उसे ऑस्ट्रिया का स्वामी बनाया, उस समय चार्ल्स दोनों ही देशों की परिस्थितियों से बिल्कुल अनभिज्ञ था। उसकी शिक्षा दीक्षा नीदरलैंड में बेल्जियमी शिक्षकों द्वारा हुई थी, जो उसे केवल अपने ही देश का राजकुमार समझते थे, तथा उन्होंने उसे न तो जर्मन भाषा पढ़ाई न ही स्पेनिश। 1517 में जब वह अपने लेमिस तथा वलून चहेतों से घिरा एवं फ्रेंच भाषा बोलता हुआ पहली बार अपनी कस्तिलियाई प्रजा के सम्मुख उपस्थित हुआ, तो उन्हें इतना अधिक धक्का लगा कि उसका स्वागत एक जन विद्रोह से किया गया। चार्ल्स वास्तव में विरासत में प्राप्त प्रदेशों में से किसी भी एक का नहीं था, अतः उसमें एक विशिष्ट देश से लगाव की वह राष्ट्रीय भावना नहीं थी जो फ्रांस एवं इंग्लैंड के उसके समकालीन शासकों में दिखाई पड़ी। वह उन कई देशों का राजा था जिसे नियति उसके अधीन ले आई थी। वह देशविहीन राजा था और जनप्रिय नहीं था। स्पेन के यूरोपीय राजवंशों के आपसी संघर्षों में हस्तक्षेप करने का प्रारंभ फर्डिनेंड एवं इजाबेला ने कर ही दिया था। चार्ल्स ने इसे और आगे बढ़ाया। यद्यपि अफ्रीका के तटीय प्रदेशों पर भी स्पेनिश अभियान जारी रहे, किंतु उसकी नीति मूलतः हैब्सबर्ग हितों से प्रेरित रही एवं उसके अधीन स्पेन ऐसी योजनाओं में फंस गया जो उसके अपने राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध थी। कई ओर से उसके चार्ल्स के राज्य से घिरे फ्रांस के लिए यह स्वाभाविक था वह उससे संघर्ष करे। मैक्स मिलियन की मृत्यु से 1519 स्थिति और भी गंभीर हो गई, क्योंकि चार्ल्स ने स्वयं को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया। फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने इसे रोकने की चेष्टा की, किंतु असफल रहा। 1521 में दोनों में संघर्ष छिड़ गया। अंततः 1556 में चार्ल्स को शांति समझौते के लिए बाध्य होना पड़ा। फर्डिनेंड एवं इजाबेला स्पेन में कोई सामान्य कर व्यवस्था अथवा न्यायिक प्रणाली स्थापित करने में सफल नहीं हो सके थे। फर्डिनेंड एवं इजाबेला के विवाह से उत्पन्न एकीकरण के बावजूद उनकी प्रजा अपने को कास्तिलियाई, अरागानी, केटोलोनियाई इत्यादि ही अधिक समझती थी, स्पेनिश नहीं, और एक प्रकार से इसका कोई विकल्प भी नहीं था। फर्डिनेंड एवं इजाबेला ने स्पेन को एक सामान्य सरकार जरूर प्रदान कर दी थी, किंतु एक जैसा प्रशासन नहीं। दो सिंहासनों का एकीकरण वैयक्तिक था, संस्थानिक नहीं। प्रत्येक राज्य ने अपना पृथक अस्तित्व और कानून बनाए रखे थे, यद्यपि उनकी उपाधि कास्तिल, लियोन, अरागान एवं सिस्की के शासक थी, किंतु फिर भी उनमें से प्रत्येक अपने ही राज्य का शासक अधिक था, स्पेन का सम्राट कम। स्पेन के विभिन्न राष्ट्रों में एकता स्वभावता नहीं थी, उसे ऊपर से लाना था। अपनी नीति को क्रियान्वित करने के लिए दोनों अपने अपने राज्य के साधनों का मिलकर उपयोग कर सकते थे, विशेषकर कास्तिल राज्य के साधनों का, जहां एकीकरण स्थापना के कुछ अस्पष्ट माध्यम मौजूद थे, जैसे एक अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली साम्राज्य जिस पर प्रतिनिधि संस्थाओं का नियंत्रण भी नहीं था और जो कुलीन तंत्र की सत्ता को चुनौती देने की सामर्थ्य रखता था। इसकी सहायता से वह एक समन्वित राज्य और फिर एक साम्राज्य की स्थापना कर सकते थे, किंतु इन साधनों को सुसंगठित करने एवं विभिन्न प्रांतों की प्रजा को इनका अभ्यस्त बनाने की आवश्यकता थी। इसलिए पहले उन्हें अपनी सत्ता को कास्तिल में दृढ़ करने की आवश्यकता थी। एकीकरण में कास्तिल अधिक प्रभावशाली हिस्सेदार था, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से यह अरागान से लगभग 3 गुना था। इसकी स्थिति अधिक केंद्रीय थी और मानवीय शक्ति की दृष्टि से भी यह अधिक श्रेष्ठ था। राजा को संघर्षरत गुटों से बचाने के लिए और शांति एवं व्यवस्था की आधारभूत स्थिति कायम करने के लिए फर्डिनेंड एवं इजाबेला को अपनी प्रजा के सबसे शक्तिशाली वर्ग से संघर्ष करना पड़ा। यह वर्ग था कुलीन वर्ग, जो 15वीं सदी तक आते जाते मूरों के विरुद्ध विजयों के परिणाम स्वरूप भूमि एवं प्रशासकीय पद दोनों ही प्राप्त करके और राजकीय भूमि पर भी कब्जा करके इतना शक्तिशाली हो गया था कि राजवंश बदलने तक की शक्ति प्राप्त कर चुका था। अतः ये दोनों कुलीन वर्ग की शक्ति कम करके ही अपनी शक्ति बढ़ा सकते थे। नई संस्थाओं को स्थापित करने में वे हिचक रहे थे और उन्होंने उन्हीं अभिकरणों का प्रयोग किया जिनसे उनकी प्रजा परिचित थी। उनमें से एक थी हरमेंदाद अथवा अनेक नगरों में संगठित की जाने वाली पुलिस सेना। इसे उन्होंने शांता हरमेंदाद अथवा पवित्र भाईचारे के रूप में पुनर्गठित कर लिया। समाज के प्रत्येक वर्ग, यहाँ तक कि पादरी और कुलीन वर्ग से भी इस पुलिस सेना के व्यय वहन के लिए अनुदान लिए गए और एक काउंसिल के माध्यम से इस पर राजकीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया, जिसका नाम था कॉन्सेज द ला हरमेंदाद 1476। इस सेना ने कुलीन वर्ग की शक्ति को कम करने में तथा अपराधियों को पकड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, किंतु कुलीनों की शक्ति को पूरी तरह नष्ट करने के लिए कुछ और अधिक सीधी कार्यवाही अपेक्षित थी। अतः सामंती दुर्गों को नष्ट कर दिया गया, विभिन्न सामंतों के पारस्परिक युद्धों को अवैध घोषित कर दिया गया, राजकीय भूमि को पुनः राजकीय कब्जे में लाया गया तथा राजा अपनी प्रजा के मुकाबले अधिक वैभव संपन्न और धनी हो गया। मास्टरशिप्स ऑफ द मिलिटरी आर्ट्स का, जो अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार था, राजकीय सेवा में विलय कर दिया गया और उसे एक राजकीय काउंसिजो द ला आर्दरे 1495 के अधीन कर दिया गया। इससे भी बढ़कर बात यह हुई कि न्याय व्यवस्था में सुधार लाया गया और सामंती न्यायालयों की तुलना में शाही न्यायालयों को अधिक शक्ति संपन्न किया गया। कैथोलिक राजाओं फर्डिनेंड तथा इजाबेला के समय से पूर्व राजा शहरी वर्ग के साथ मिलकर कुलीन वर्ग के नियंत्रण से स्वयं को मुक्त करने में असमर्थ रहा, क्योंकि उस समय नगर भी कुलीन तंत्र के अधीनस्थ या उनके समर्थक थे। किंतु 15वीं शती के मध्य तक शहरी लोग सामंती अव्यवस्था से तंग आ गए थे और उनके विरुद्ध नेतृत्व की आशा में थे। प्रारंभिक हरमेंदाद शहरी लोगों की ही देन थे और यह शांति, सुरक्षा और व्यापारिक सुविधाओं के लिए नगरवासियों की आकांक्षा का ही परिणाम था कि कुलीन वर्ग के विरुद्ध राजकीय कार्यक्रमों को सफलता मिल सकी। कास्टिल में शहरों में भी शाही प्रतिनिधियों की नियुक्ति करके फर्डिनेंड और इजावेला ने उन्हें भी राजकीय नियंत्रण में ले लिया, किंतु पूर्वी राज्यों में ये इतने सफल नहीं रहे। फर्डिनेंड इन राज्यों को कास्टिल में ही मिला देना चाहता था। उसने कास्टिल एवं इन राज्यों में परस्पर विवाह संबंधों को बढ़ावा दिया। कैटेलोनिया आदि में कास्टिलियाई अधिकारी नियुक्त किए किंतु स्पेनी धर्माधिकरण ही एकमात्र ऐसी संस्था थी जो इन दोनों क्षेत्रों में विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त यह पूर्वी राज्य इतने निर्धन थे और मानवीय शक्ति में भी इतने कम थे कि इनकी अपनी संस्थाएं तोड़कर अगर राजकीय केंद्रीकरण लादा जाता तो उससे भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद हैब्सबर्ग ने कैथोलिक राजाओं से एक अखंड शासन व्यवस्था नहीं अपितु एक वैविध्यपूर्ण विकेंद्रित व्यक्तिगत संघ ही उत्तराधिकार में प्राप्त किया था। फर्डिनेंड एवं इजाबेला ने स्पेनिश चर्च की स्वतंत्रता को क्षति पहुंचाकर उसे भी अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की। बेनिफिसो पर पोप की जगह राजकीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। कुलीन वर्ग, पादरी तथा शहरी वर्ग तीनों की महत्ता को कम करने का अवश्यंभावी परिणाम था उस संस्था का टेस का भी पतन जिसमें इन तीनों वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। इस संदर्भ में देखने पर धर्माधिकरण ही एकमात्र सर्वव्यापी संस्था थी। यहाँ यह शायद राज्य के प्रशासनिक विभाजन एवं विभिन्नता में एकता लाने के प्रयास थे। चार्ल्स पंचम के समय उसके चांसलर मार्क्यूरो गाल्टमारा ने विस्तृत साम्राज्य में कुछ सामान्य संस्थाएं स्थापित करने की चेष्टा की। उल्लेखनीय रूप से वित्तीय काउंसिल, युद्ध काउंसिल तथा एक अंतःप्रदेशीय राज्य काउंसिल। किंतु साम्राज्य के विस्तार ने संभवतः अखंडता की स्थापना की दिशा में बाधा उत्पन्न की और स्वयं स्पेन ने भी प्रशासनिक एकता की प्रक्रिया में बाधा डाली। स्पेन के निरंकुश राजतंत्र के वंशीय हित यूरोप के विभिन्न भागों में फैले हुए थे। यह राजतंत्र स्पेन के कृषक वर्ग एवं व्यापारिक वर्गों को नियमित समर्थन देने में असमर्थ एवं अनिच्छुक थे, इसलिए ये वर्ग समुद्र पार विकसित औपनिवेशिक एवं व्यापारिक व्यवस्था से कोई लाभ नहीं उठा सके। राजतंत्र की राजकोषीय आवश्यकताओं ने, जो यूरोप के राजवंशीय धार्मिक युद्धों में उसके सम्मिलित होने से उत्पन्न हुई थी, उसे बाध्य कर दिया कि वह अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को विदेशी वित्तदाताओं के हाथों गिरवी रख दे। स्पेन की कच्ची ऊन और स्पेनी उपनिवेशों से आने वाले सोने का विदेशी व्यापार यूरोप के अन्य समृद्ध नगरों के पूंजीपति व्यापारियों के हाथों में था। आने वाले सोने का विदेशी व्यापार यूरोप के अन्य समुद्र नगरों के पूंजीपति व्यापारियों के हाथों में था। इस प्रकार स्पेन एवं आश्रित अर्थव्यवस्था का देश बन गया। स्पेन के समुद्र पार के व्यापार के कारण स्पेन में बुर्जुआ वर्ग के विकास को भी धक्का लगा। अमेरिका की खानों पर स्पेन का नियंत्रण था, जिसकी अर्थव्यवस्था लाभप्रद होते हुए भी अविकसित एवं खोद कर धन निकालने पर आधारित थी। इस व्यवस्था ने स्पेन की सरकार को उद्योगों के प्रति और अपने यूरोपीय प्रदेशों में भी वाणिज्यिक उद्यमों को बढ़ावा देने के प्रति उदासीन बना दिया। वास्तव में स्पेन का पतन एक ऐसा विषय है जिस पर इतिहासकार एकमत हैं। 1938 में ईजी हैमिल्टन द्वारा इस विषय पर अपना मत प्रतिपादित किया और उसके बाद कई प्रसिद्ध लेखों में इतिहासकारों ने अपने अपने मत प्रकट किए। इन मतों के आलोक में स्पेन के पतन संबंधी अधुनातन विचारों का विश्लेषण किया जाना बहुत जरूरी है। इस विषय में कोई संदेह नहीं कि स्पेन को कई संकटों एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, किंतु वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या वे संकट एवं कठिनाइयां कभी एक संपन्न समाज के पतन का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या वे कठिनाइयां इतनी व्यापक स्तरीय थीं कि उन्होंने स्पेन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया और ये 2 शताब्दियों तक चलती रही? इन सभी प्रश्नों का उत्तर निषेधात्मक है। अतः स्पेन के पतन के स्वरूप में के विषय में कई प्रश्न उदित हो जाते हैं। इस संदर्भ में यह बात ध्यान देने योग्य है कि आर्थिक दृष्टि से स्पेन कभी बहुत मजबूत नहीं था। कास्टिल खेती के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था तथा अपनी समृद्धि के लिए ऊन व्यापार पर आश्रित था। दूसरा तत्व यह है कि आधुनिक युग के प्रारंभ में स्पेन की अर्थव्यवस्था समेकित नहीं थी। यह एक पिछड़ा देश था जिसके पास अपने साधन न के बराबर थे तथा यह विदेशी मंडियों एवं विदेशी संभरणकर्ताओं पर आश्रित था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में स्पेन में पराश्रय के विभिन्न प्रकार विकसित हो गए थे। पहला पराश्रय चक्र उन व्यापार संबंधी था जिसे फर्डिनेंड एवं इजाबेला ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने का प्रयास किया था और जो 16वीं सदी में अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया था। व्यापार में प्रमुख स्थान फ्लैंडर्स, इटली और फ्रांस का था। अतः इस पराश्रय चक्र ने स्पेन द्वारा कच्चे ऊन के निर्यात एवं तैयार माल के आयात का रूप लिया। इसका परिणाम हुआ स्पेन की मंडी में विदेशी पूंजी का प्रभुत्व, जिसने धीरे धीरे उधार देने की मशीनरी को नियंत्रण में कर लिया और यह स्पेन के राजकीय राजस्व के भाग्य के निर्णायक हो गई। इस प्रकार वही ऊन जो आवश्यकता के समय किसानों या सरकार दोनों के ही बचाव का साधन थी, स्पेन के हितों पर विदेशियों के हावी होने का माध्यम बन गई। इस प्रकार कैथोलिक राजाओं एवं चार्ल्स पंचम का समय, जो ऊपरी तौर से विकासशील अर्थव्यवस्था का समय प्रतीत हो रहा था, वास्तव में ऐसा समय था जब स्पेन औपनिवेशिक मंडी के क्लासिकी पहलू अपनाने लगा। अमेरिका से आने वाले धन ने भी पराश्रयता के एक और चक्र को ही जन्म दिया, क्योंकि कास्टिल एवं एंडेलुसिया में आने वाले अमेरिकी धन, सोना चांदी ने अविकसित मेट्रोपोलिस में शीघ्रता से धन ला तो दिया, किंतु अपने उत्पादन से व्यापार संतुलन अपने नियंत्रण में करने में असमर्थ रहा। यदि स्पेन में एक मानक साम्राज्यवादी ढांचा होता तो उसने नई दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार एवं प्रभुत्व स्थापित कर लिया होता, क्योंकि उस हालत में वह उपनिवेश से कच्चा माल लाद कर बदले में उसकी मंडियों में तैयार माल भर देता और इस प्रकार वाणिज्यवादी विस्तार को प्रोत्साहन मिलता। किंतु स्पेन तो स्वयं ही औपनिवेशिक मंडी बनाने की ओर अग्रसर हो रहा था, अतः वह पराश्रितता से प्रभुत्व की ओर नहीं जा सका। इस प्रकार विदेशी मंडियों और उनके गुमास्तों ने अपने कार्यकलापों को अमेरिका तक विस्तृत कर दिया। इस प्रकार नए विश्व के साथ अपने संबंधों में भी स्पेन ने स्वयं को इस स्थिति में पाया जहाँ वह विदेशी सामानों का गोदाम भर था। चार्ल्स का शासन वास्तव में कांटों का ताज था। वह कभी सुख से नहीं रह सका। हालांकि उसके शासन काल में ही स्पेन का अधिकतम उत्थान हुआ। अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण के अधिकांश भाग स्पेन के कब्जे में आ गए थे और नई दुनिया में स्पेन सबसे बड़ा उपनिवेश बन गया, किंतु जितनी तेजी से उत्थान हुआ उतने ही गहरे पतन के बीच पड़े थे। उनका साम्राज्य स्थायी नहीं हो सकता था। आर्थिक पक्ष कई कारणों से कमजोर था। एक तो उसे शासन संभालते ही युद्ध शुरू कर देना पड़ा जिसका सिलसिला अंत तक नहीं टूटा। युद्ध क्षेत्र में सीमित नहीं था, कभी फ्रांस की सीमाओं पर, कभी इटली में और कभी साम्राज्य की पूर्वी सीमाओं पर। सेना का यातायात कठिन तो था ही, बेहद खर्चीला भी था। फिर वह एक शक्तिशाली नौसेना के रखने के लिए मजबूर था, क्योंकि अटलांटिक महासागर पार के उपनिवेशों की सुरक्षा उसी पर आधारित थी। इंग्लैंड से संघर्ष की स्थिति होने के कारण भी नौसेना आवश्यक थी। इतने सारे खर्च राजस्व से पूरे नहीं हो सकते थे, क्योंकि कर व्यवस्था न केवल पंगु थी वरन जैसी भी थी वह भी लागू नहीं हो पाती थी। ऐसी स्थिति में सोना चांदी उगलते उपनिवेश वरदान थे, किंतु बिना अर्जित किया लूटा हुआ धन थोड़े दिनों तो राहत देता रहा, लेकिन इससे पूरी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। स्पेन में बाहर से आने वाले धन के कारण लोग उस पर आश्रित होने लगे थे और वे श्रम करना छोड़ते जा रहे थे। मूर और यहूदी भाग रहे थे। साम्राज्य में राजनीतिक एवं धार्मिक कारणों से अशांति थी। राष्ट्रीय देशभक्ति सभी जगह इतनी विकसित नहीं हुई थी कि स्वायत्तता के आधार पर शासन चलाया जा सके। किंतु चार्ल्स का विरोध तो हो ही नहीं रहा था, कभी सामंत सिर उठाते तो कभी राजा। फिर लूथर का प्रादुर्भाव हो गया। पूरी तरह कैथोलिक होने के कारण चार्ल्स लूथर के कार्यों को धर्म विरोधी समझता था। लूथर के आंदोलन को जर्मन शासन का समर्थन मिलने से चार्ल्स को आंतरिक राजनीतिक खतरे का भी पता लग गया। अतः लूथरवाद धार्मिक तथा राजनीतिक दोनों दृष्टियों से चार्ल्स के लिए एक विद्रोह था। उसका उसने दमन भी करना चाहा, किंतु सफल नहीं हो सका। सन 1556 में उसने साम्राज्य से मुक्ति लेने का फैसला कर लिया, किंतु उसे छोड़ने से पहले उसने एक फैसला किया। उसने देखा था कि सबसे बड़ी कमजोरी राज्य का विस्तार थी, अतः उसने राज्य का विभाजन कर दिया। स्पेन, नीदरलैंड, इतालवी राज्य और अमेरिकी साम्राज्य उसने पुत्र फिलिप को दे दिए, और यूरोप के राज्य अपने भाई फर्डिनेंड को, जिसे बाद में सम्राट बना लिया गया।